दिन भर रविवार 25 अक्टूबर मैं हूं निखिल रंजन। प्रधानमंत्री के मन की बात पर जेडीयू ने उठाए सवाल, आदर्श चुनाव संहिता के उल्लंघन का दावा।
कि दो बातें जो प्रधानमंत्री जी ने आज कही कि दोनों मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट का उल्लंघन है और एक करप्ट प्रैक्टिस है।
नवरात्र के बाद बिहार पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की 4 रैलियां, साप्ताहिक कार्यक्रम फैला उजियारा में आज कहानी सम्राट अकबर की।
उनकी कदकाठी शाही शानो शौकत के हिसाब से है, दूर से पहली ही नजर में कोई उन्हें आसानी से पहचान सकता है कि वही शहंशाह हैं। उनके हाव भाव शांत गंभीर और गरिमा से सराबोर हैं, और अगर गुस्से में हो तो निर्मम शहंशाह।
दक्षिण अफ्रीका ने दिया भारत को 439 रनों का लक्ष्य, खबरें होंगी और भी, लेकिन पहले प्रमुख समाचार।
बीबीसी समाचार हरिता कांडपाल से। प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम में 1 जनवरी 2016 से ग्रुप बी, सी और डी के नॉन गेजेट पदों के लिए इंटरव्यू खत्म करने की घोषणा को जनता दल यूनाइटेड और कांग्रेस ने चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन बताया है। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा कि मोदी चुनाव आयोग की नरमी का फायदा उठा रहे हैं, वहीं चुनाव आयोग प्रधानमंत्री की मनमानी को रोकने में नाकाम रहा है। उन्होंने मांग की कि चुनाव आयुक्त की रिटायरमेंट के बाद उन्हें कोई अन्य सरकारी पद नहीं दिया जाना चाहिए और मुख्य न्यायाधीशों पर भी ऐसी ही रोक लगाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी आगामी संसद सत्र में ये मुद्दा उठाएगी। सीरिया में पश्चिमी देशों के समर्थन वाले फ्री सीरियन आर्मी गुट ने रूस के सैनिक समर्थन को ठुकरा दिया है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लाफ्रोव ने कहा कि अगर फ्री सीरियन आर्मी गुट के लड़ाके चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट के खिलाफ लड़ रहे हैं तो मॉस्को मदद करने के लिए तैयार है। एफएसए के प्रवक्ता इस्साम अल रईस ने बीबीसी को बताया कि उनके गुट को रूस के सहयोग की जरूरत नहीं है और वो रूस पर भरोसा भी नहीं करते। इस्साम अल रईस:
We are going to continue fighting because we believe that we are fighting the regime who is killing his.
हम लड़ाई जारी रखेंगे क्योंकि हम मानते हैं कि हम उस सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं जो अपने ही लोगों को मार रही है। ये जाहिर है कि सीरिया के लोग असद सरकार को नहीं चाहते। अगर असद सीरिया के लोगों के साथ होते तो हमलावरों को सीरिया में हमलों के लिए नहीं बुलाते, तो वो असद के समाधान में शामिल होने की बात कैसे कह सकते हैं। ये थे इस्साम अल रईस। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अमेरिका और सऊदी अरब सीरिया में राष्ट्रपति बशर अल असद का विरोध करने वाले के विरोध में लड़ने वाले विपक्षी दलों को दिया जाने वाला समर्थन बढ़ाने के लिए सहमत हो गए हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री जॉन कैरी और रियाद के किंग सलमान के बीच बैठक के बाद अधिकारियों ने बताया कि दोनों देशों के बीच सीरिया में राजनीतिक समाधान निकालने पर जोर देने पर सहमति बन गई है। प्रवासी संकट पर चर्चा के लिए यूरोपियन यूनियन के 10 सदस्य देशों और अल्बेनिया, सर्बिया और मैसेडोनिया की आज ब्रसेल्स में बैठक होने वाली है। माना जा रहा है कि यूरोपियन यूनियन पश्चिमी बाल्कन देशों में प्रवासी संकट से निपटने के लिए 400 से ज्यादा सीमा सुरक्षा गार्ड तैनात करने के लिए तैयार है। ये प्रस्ताव ब्रसेल्स में होने वाली बैठक में रखा जाएगा। यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष जियां क्लॉद यंकर ने एक जर्मन अखबार को बताया कि इस क्षेत्र के देशों को अस्त व्यस्त हालत में प्रवासियों की जिम्मेदारी अपने पड़ोसियों पर ठेलना बंद करना होगा। इसराइल की पुलिस ने कहा है कि हेबोन शहर में पुलिस अधिकारियों पर चाकू से हमला करने वाली एक फलस्तीनी महिला को गोली मारी गई है जिससे वो घायल हो गई है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी रेडियो पर दिन भर में आपका स्वागत है। आप ये कार्यक्रम bbchindi.com और मोबाइल पर भी सुन रहे हैं। आज निखिल रंजन के साथ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम मन की बात की 13वीं कड़ी का प्रसारण हुआ। कार्यक्रम में मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार के ग्रुप बी, सी और डी के नॉन गेजेटेड पदों पर भर्ती के लिए 1 जनवरी 2016 से इंटरव्यू नहीं होगा। साथ ही मोदी ने दीपावली के बाद होने वाली अपनी ब्रिटेन यात्रा का भी जिक्र किया, जहां वे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के निवास के भारत की संपत्ति बनने के बाद उसका उद्घाटन करने वाले हैं। मोदी के इस कार्यक्रम को महागठबंधन दलों ने आचार संहिता का उल्लंघन बताया है। उन्होंने कहा है कि मोदी की ओर से कार्यक्रम में की गई घोषणाएं बिहार के मतदाताओं को लुभाने के लिए की गई हैं। एक रिपोर्ट के साथ हैं रोहित जोशी।
बिहार चुनावों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 4-4 रैलियों वाले व्यस्त दिन की शुरुआत से पहले ऑल इंडिया रेडियो के सभी प्रसारण केंद्रों से प्रधानमंत्री की मन की बात का प्रसारण हुआ।
प्यारे देशवासियों, आप सबको नमस्कार। फिर एक बार
अपने कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 1 जनवरी 2016 से ग्रुप बी सी और डी के नॉन गेजेटेड पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू नहीं होगा।
केंद्र सरकार के ग्रुप डी, ग्रुप सी और ग्रुप बी के नॉन गेजेटेड पदों में अब भर्ती के लिए साक्षात्कार नहीं होगा, इंटरव्यू नहीं होगा।
कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने दीपावली के अगले दिन से होने वाली अपनी ब्रिटेन यात्रा की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वे इसके लिए रोमांचित हैं क्योंकि लंदन में जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रहते थे वो घर भारत की संपत्ति बन गया है। उन्होंने बताया कि वे विधिवत रूप से इसका उद्घाटन करेंगे। उधर बिहार चुनावों के दौरान प्रसारित हुए प्रधानमंत्री मोदी के रेडियो कार्यक्रम पर विपक्षी दलों ने गंभीर ऐतराज जताया है। दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए महागठबंधन दल के नेताओं ने प्रधानमंत्री की ओर से कार्यक्रम में की गई घोषणाओं को चुनाव आचार संहिताओं का उल्लंघन बताया है। वरिष्ठ अधिवक्ता और राज्यसभा सांसद केटीएस तुलसी ने कहा है कि प्रधानमंत्री को कानून का उल्लंघन नहीं करना चाहिए।
कि दो बातें जो प्रधानमंत्री जी ने आज कही, एक तो इंटरव्यू की बात, इंटरव्यू बी सी और डी में नहीं होगी, और दूसरा स्कॉलरशिप दिए जाएंगे ट्राइबल और बैकवर्ड को, ये दोनों मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है और एक करप्ट प्रैक्टिस है।
जनता दल यूनाइटेड के नेता केसी त्यागी ने चुनाव आयोग पर प्रधानमंत्री के प्रति नरमी बरतने का आरोप लगाया है। त्यागी ने कहा है कि मोदी की ओर से मन की बात कार्यक्रम में की गई घोषणाएं बिहार के मतदाताओं को लुभाने के लिए की गई हैं। त्यागी ने इस मामले को गंभीर बताते हुए कहा है कि वे संसद के अगले सत्र में चुनाव आयुक्त की नियुक्ति और उससे जुड़े कुछ अहम सवालों को उठाएंगे।
चुनाव आयोग प्रधानमंत्री की मनमानी रोकने में नाकामयाब है और आने वाला जो संसद का सत्र होगा, एक तो चुनाव आयुक्त बनने के बाद और रिटायर होने के बाद उसको किसी सरकारी पद का ऑफर नहीं दिया जाना चाहिए और उसके चयन की प्रक्रिया में प्रधानमंत्री के साथ नेता प्रतिपक्ष को भी शामिल किया जाना चाहिए।
केसी त्यागी ने मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री की ओर से ग्रुप बी सी और डी के नॉन गेजेटेड पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू न किए जाने की घोषणा को आरक्षण विरोधी बताया है। उधर प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कार्यक्रम में भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन का भी जिक्र किया जो सोमवार से नई दिल्ली में शुरू हो रहा है। मोदी ने देशवासियों को दीपावली के लिए शुभकामनाएं भी दी हैं।
प्रधानमंत्री के मन की बात पर विरोधी दलों ने उठाई है आवाज और वो ये से कह रहे हैं कि चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है। रिपोर्ट सुना रहे थे रोहित जोशी। देश को रेडियो पर मन की बात में संबोधित करने के बाद प्रधानमंत्री पहुंचे बिहार, जहां आज उन्होंने नालंदा, हाजीपुर, नौबतपुर और छपरा में रैलियां की। हाजीपुर की रैली में बीबीसी संवाददाता नितिन श्रीवास्तव भी मौजूद थे। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ ही उन लोगों की भी बात सुनी जो रैली में आए थे। आइए सुने कि लोग क्या कह रहे थे।
राजधानी पटना से करीब 1 घंटे की दूरी पर हाजीपुर में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी चुनावी रैली कर रहे हैं। 12 दिनों के बाद उन्होंने ये रैली का कार्यक्रम शुरू किया है फिर से। हजारों लोग हैं यहां पर सड़कों पर, उनके आने के बावजूद लोग दौड़ दौड़ कर भाग भाग कर आ रहे थे उनको देखने। बिहार प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने सारे घोड़े खोल रखे हैं आज की इन 4 रैलियों में। लोग बाग खड़े हैं, नरेंद्र मोदी जहाँ पे कुछ बात करते हैं, कोई वादा करते हैं, लोग बाग झूम उठते हैं। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ हजारों लोग जमा हैं और अभी भी बाहर से लोग आ रहे हैं, धूल उड़ रही है, मतलब बहुत काफ़ जितने लोगों की उम्मीद थी उससे ज़्यादा लोग हैं। क्या देखने सुनने लोग आए हैं यहाँ पर?
यहाँ अपने प्रधानमंत्री जी को देखने हैं।
प्रदेश का चुनाव है, प्रधानमंत्री जी आए हैं यहाँ पर, मुख्यमंत्री के रूप में किसको देखना चाहते हैं?
सुशील कुमार मोदी को।
सुशील कुमार मोदी को देखना चाहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक तो ये नहीं कहा है कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे।
हम लोग को पसंद है, हमको पसंद है,
ये अपना व्यक्ति बता रहे हैं।
आपको पसंद है, आपकी क्या पसंद है?
हम लोग नंद किशोर यादव को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं।
आप नंद किशोर यादव को देखना चाहते हैं, आप सुशील मोदी को देखना चाहते हैं। तो ये बताइए कि आप सब लोग भाजपा के कार्यकर्ता हैं लेकिन अलग अलग मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, और नरेंद्र कैसे समझौता कैसे होगा आप दोनों के बीच में?
पार्टी जो फैसला करके जो चुन देगी
आप उसको मानेंगे? अगर नंद किशोर यादव को देखेंगे
आप मानेंगे? आप लोग मानेंगे?
हाँ, वो मानेंगे, वो
आपको मानेंगे।
तो ये बताइए कि नरेंद्र मोदी जी और भाजपा जो है वो विकास की बात करती रही है हाजीपुर में, इस क्षेत्र में जहाँ पर वो आज वो रैली कर रहे हैं, क्या उम्मीदें हैं विकास की?
यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी के नाम पर ही इतना उत्साह है लोगों में। रामविलास जी यहाँ के सांसद हैं, उन्हें 1977 से जो रामविलास जी ने विकास किया है, कोई ऐसा सांसद कहीं बता दे कि जो विकास किया है रामविलास पासवान जी, क्या नहीं लाए नाई पर सी पेट होटल में?
यानी यहाँ पर विकास हो चुका है?
विकास
हुआ है तो सिर्फ पटना में नहीं हुआ है। अगर पटना में इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आईटी कंपनी नहीं है। जब तक बिहार में आईटी कंपनी नहीं आएगी बिहार का विकास होना असंभव है।
कंपनी कौन लाएगा? नरेंद्र मोदी जी लाएंगे।
यस लाएंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी का जो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, मैं पेशे से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ लेकिन अपने देश अपना बिहार को छोड़कर मैं बाहर काम करता हूँ।
ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जो है, जो मुख्यमंत्री है आपके, वो बुरे आदमी नहीं है, अच्छे आदमी है, ईमानदार आदमी, और उन्होंने भी प्रदेश के विकास के लिए कुछ किया है, क्या ये सही बात है?
ईमानदार तभी तक न है जब जनता ने उनको मौका दिया। ईमानदार थे तो एनडीए गठबंधन को न लोगों ने वोट किया, नीतीश कुमार को वोट नहीं किया, एनडीए गठबंधन को वोट किया।
जब से अलग हो गए हैं विकास का जो मुद्दा है ना, वो मंद पड़ गया है।
बोलते हैं उसी के साथ मिल लिया, अब क्या हम
आप जिसके करेंगे, जिसको जंगल राज बोलते थे उसी के साथ मिल लिया, अब क्या हम उनको सपोर्ट करेंगे?
पशु का चारा खा गए हैं, उसके साथ वो गठबंधन किए हैं। निश्चित रूप से बिहार परिवर्तन की दौर में है। यानी उन्होंने जो अच्छा काम किया था, क्या वो इस उनके इस नए गठबंधन
से उनकी छवि धूमिल हो गई है? अभी गठबंधन से चल रहा
है
और आने वाले दिन में बिहार को हम बदल के रहेंगे, तभी हम लोगों की आकांक्षा, नवयुवकों की जो आकांक्षा है वो पूरी हो।
अभी एक आखिरी सवाल आप सब लोगों से, नरेंद्र मोदी जी वो सामने बैठे हैं मंच पर, क्या आपको लगता है आज चुनाव है, वो आए हैं, प्रदेश चुनाव में भी आए हैं, आगे आएंगे क्या ऐसे इसी तरह यहाँ बैठेंगे?
पूरा विश्वास है, बिल्कुल आएंगे, पूरा विश्वास है, वो हम लोगों से धोखा नहीं करेंगे, ये विश्वास है।
ये आपने बातचीत सुनी उन लोगों की जो आए थे हाजीपुर की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने। और अब वक्त तो है इनकार्नेशन का, लेकिन उससे पहले हम जरा खेल समाचार सुन लेते हैं ताकि आपको मैच का ताजा हाल बता सकें। आदेश कुमार गुप्त स्टूडियो में आ चुके हैं मैच की खबरों को लेकर के। बताइए, आज तो बहुत बड़ा स्कोर बना दिया है दक्षिण अफ्रीका ने।
जी हाँ निखिल, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुंबई में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सीरीज का पांच और आखिरी मैच खेला जा रहा है, जहां दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीता और यही निर्णायक हो गया ऐसा लगता है, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका ने निर्धारित 50 ओवर में 4 विकेट खोकर 438 रनों जैसा विशाल स्कोर बनाया। भारत के खिलाफ एक दिवसीय क्रिकेट में ये किसी भी विरोधी टीम का
इतना बड़ा
सबसे
स्कोर
बड़ा
तो
स्कोर है। और आज अगर भारतीय टीम की बात की जाए तो थोड़ी देर पहले उसका स्कोर 24वें ओवर में 3 विकेट खोकर 167 रन था। अजिंक्य रहाणे 75 रन बनाकर खेल रहे थे, उनका साथ दे रहे थे सुरेश रैना। यानी भारत के लिए अगर रनों की दरकार और गेंदों की बात की जाए तो 159 गेंदों पर 272 रन बना रहे हैं, यानी
कितना मुश्किल है ये लक्ष्य भी
काफ़ी मुश्किल नज़र आता है। क्योंकि अगर दक्षिण अफ्रीकी टीम की बात की जाए तो डेलिस्टेन, रबाडा और एबॉट ये ऐसे गेंदबाज हैं जिनकी गेंदों में काफ़ी तेज़ी है, ऐसा नहीं है कि इनकी गेंदों पर लगातार चौके छक्के लगाए जा सकते हैं। और इसके अलावा स्पिनर इमरान ताहिर भी अच्छी गेंदबाजी करते हैं। और अगर दक्षिण अफ्रीकी टीम की बात की जाए तो क्विंटन डिकॉक ने, जो कि सलामी बल्लेबाज हैं, केवल 87 गेंदों पर 109 रन बनाए, जिसमें उनके 17 चौके और एक छक्का शामिल था। और हाशिम मामला ने भी आज कोई बहुत बड़ी पारी तो नहीं खेली लेकिन 23 रनों की तेज तरार पारी खेली, जिसके लिए उन्होंने 13 गेंदों में ही 5 चौके लगाए, लेकिन कमाल की पारी खेली फेफ डू प्लेसिस और कप्तान एबी डिविलियर्स ने। फेफ डू प्लेसिस ने भी 115 गेंदों पर 133 रन बनाए, जिसमें उनके 9 चौके और 6 छक्के शामिल थे। और उसके बाद कप्तान एबी डिविलियर्स ने केवल 61 गेंदों पर 119 रन बनाकर स्टेडियम में मौजूद दर्शकों को भी हैरान कर दिया। और भारतीय टीम तो उमस की वजह से वैसे ही पसीने से बतर थी। तो कुल मिलाकर आज के मुकाबले में दक्षिण अफ्रीकी कप्तान एबी डिविलियर्स के बल्ले का कहर जमकर भारतीय गेंदबाजों पर टूटा। भुवनेश्वर कुमार ने 106 रन खर्च किए एक विकेट हासिल करने के लिए, और इसके अलावा
कहा जा रहा है कि एक शतक उन्होंने भी लगा।
और अमित मिश्रा भी महंगे साबित हुए, 10 ओवर में उन्होंने 78 रन दिए। सुरेश रैना ने 3 ओवर में 19 रन देकर एक विकेट लिया। फिलहाल अगर भारतीय टीम के स्कोर की बात की जाए तो एक विकेट खोकर 172 रन है और मंजिल अब काफी दूर।
बहुत शुक्रिया आदेश कुमार गुप्त जी खेल समाचारों के लिए। और आज रविवार है और बीबीसी सुनने वालों को इंतज़ार रहता है फैलाओ ज्यारा का, जो सुनील खिलनानी की बनाई इनकार्नेशन का हिंदी रूपांतर है। तो अब इंतज़ार ख़त्म, आज इस कार्यक्रम की 16वीं कड़ी में हम आपको बता रहे हैं ज़िले इलाही अकबर की कहानी। मुगलिया सल्तनत के शहनशाह अकबर ने अलग अलग धर्मों के सकारात्मक पहलुओं को समेट कर एक नया धर्म बनाया, दीन इलाही। इसके अलावा उनके और उनके शासनकाल की क्या विशेषताएँ रही, सुनिए मोहनलाल से।
Thank you.
करीब 400 साल पहले सफर का जरिया था घोड़ा या फिर पैदल। आज जिस तरह सैलानी आते हैं उससे बहुत अलग। हमारी मंजिल है एक ऐसा वीरान शहर जैसा इस दुनिया में और कोई नहीं है। उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाके में बहुतायत में मिलने वाले लाल बलुआ पत्थर से बना फतेहपुर सीकरी। इस लगभग रेगिस्तान जैसे बंजर इलाके में अपना गंभीर सौंदर्य बिखेर रहा है। हम इस समय एक बस में हैं जो एक पहाड़ पर चढ़ रही है। ये हमें उस जगह शहंशाह अकबर के महान शहर की मूल जगह पर ले जाएगी। फतेहपुर सीकरी के परकोटे, महल, मंदिर राजसी भव्यता लिए हुए हैं, लेकिन इसमें अद्भुत और रहस्यमय भवन भी हैं। महीन नक्काशी वाले खंबे और कतारबद्ध कक्ष, जलमार्ग, रत्नजड़ित मीनारें और मेहराबदार दरवाजे। फतेहपुर सीकरी, इसके रचनाकार हैं मुगल साम्राज्य के महानतम बादशाह अकबर। अकबरनामा में लिखा है,
हमारे वक्त में दुनिया की हिफाजत करने वाले बादशाह, तमाम विज्ञानों के हाकिम, खुदा की सत्ता के केंद्र, बे इंतहा दानशील इंसान।
फतेहपुर सीकरी में लाल पत्थर पर मरम्मत का काम करते हुए आज भी हम उन शिल्पियों को देख सकते हैं जिन्होंने संभवतः अपने पुरखों से इस हुनर को सीखा होगा। इसलिए पत्थर तराशने की ये परंपरा इस इलाके में अब भी जीवित है। ये शहर तीन तरफ से ऊंची दीवार और मजबूत मीनारों से घिरा है, लेकिन यहाँ पहरेदारों की जगह अब टूर गाइड और टिकट बेचने वालों ने ले ली है।
मैनेजर टू चेक योर टिकट।
ये शख्स आपका टिकट चेक करना चाहता है। फतेहपुर सीकरी के हवादार कक्ष और मंडप में एक छावनी का एहसास है। इस वास्तुशिल्प में शायद अकबर की मध्य एशियाई जड़ों की अनगूंज है, लेकिन पशुओं की खालों और लकड़ी की चौखटों की जगह अब पत्थर और संगमरमर ने ले ली है, जिन्हें हिंदू शिल्पियों ने बड़ी कुशलता और नफासत से तराशा है। अकबर ने 1571 में अपने पहले पुत्र के जन्म के मौके पर इस शहर का निर्माण शुरू करवाया था। जल्द ही इस शहर ने आकार लेना शुरू किया और आगरा और लाहौर के बाद अकबर की राजधानियों की श्रृंखला में शामिल हो गया। लेकिन खुद अकबर किसी शाही महल की भव्यता और सुविधाओं से कहीं दूर पले बढ़े थे। वो पैदा हुए थे सिंध के रेगिस्तान में। जब वो छोटे थे तो अपने वालिद मुगल सल्तनत के दूसरे बादशाह हुमायूं के साथ बहुत भटके थे, क्योंकि उस वक्त हुमायूं के हाथ से सत्ता फिसल चुकी थी और वो निर्वासित जीवन जी रहे थे। वक्त बदला, हुमायूं ने दिल्ली जीत ली, लेकिन कुछ महीनों के बाद सीढ़ियों से गिरने से उनकी मौत हो गई। महज 14 साल की उम्र में अकबर को सन 1556 में बादशाह घोषित कर दिया गया और इस तरह से उनका शासनकाल शुरू हुआ जो करीब 49 साल तक चला। बादशाह बनने के तुरंत बाद अकबर बड़ी चुनौतियों से रूबरू हुए, लेकिन उन्होंने इसका सामना दृढ़ता से किया। सबसे पहले तो उन्होंने अपना नाता अपने मार्गदर्शक बैरम खान और अपनी सौतेली माँ से तोड़ा। उनके सौतेली भाई के बारे में तो एक किस्सा मशहूर है कि अकबर ने हुक्म दिया था कि उसे हरम की छत से गिरा कर मार दिया जाए, लेकिन जब वो गिरने के बाद भी नहीं मरा तो कहा जाता है अकबर ने खुद उसे उसी छत से दोबारा फेंक दिया था। अकबर का एक आभा मंडल बन गया, एक निर्दयी और दृढ़ शासक का। उस वक्त आए एक यात्री रब्बाई यानी यहूदी पादरी एंटोनियो मोंसेराटे ने अकबर की शख्सियत को कुछ इस तरह से बयां किया है।
उनकी कदकाठी शाही शानो शौकत के हिसाब से है। दूर से पहली ही नजर में कोई उन्हें आसानी से पहचान सकता है कि वही शहंशाह हैं। उनके हाव भाव शांत, गंभीर और गरिमा से सराबोर हैं, और अगर गुस्से में हो तो निर्मम शहंशाह।
अकबर ने मुगल साम्राज्य को 3 गुना तक बढ़ा दिया। उनका साम्राज्य भारतीय उपमहाद्वीप में बंगाल की खाड़ी से अरब सागर तक और दक्षिण में दक्षिणी पठार तक फैला था। उन्होंने ये विजय बहादुरी और मजबूती से हासिल की। 25 सालों में उनकी सेना 6 गुनी बड़ी हो गई थी। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के किले को जीतने की लड़ाई सबसे ज्यादा रक्त रंजित थी। जब ये लगभग निश्चित हो गया कि अकबर जीतने वाले हैं, तो चित्तौड़ के राजपूतों ने हार मानने से बेहतर सामूहिक आत्महत्या का रास्ता चुना। कुछ लोगों का कहना है कि इस लड़ाई में अकबर ने करीब 20,000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया।
काबुल में जब अकबर की सेना विद्रोह को कुचलने के लिए आगे बढ़ी तो एंटोनियो मोंसेराटे ने उस नजारे को देखा था। 500 हाथी, अनगिनत सिपाही, 28 तोपे और 50,000 घोड़सवार सैनिकों की विशाल फौज।
खेतों और जंगलों को ढकती हुई 1.5 मील तक सेना फैली थी, इतनी विशाल कि कोई जानवर भी अगर रास्ते में आ जाए तो वो सेना की कतार को तोड़कर कहीं भाग नहीं सकता।
लेकिन अकबर सिर्फ फौज की ताकत पर ही भरोसा नहीं करते थे, वो नई सामरिक रणनीतियों को बुनने और उन्हें लागू करने में भी कुशल थे। मसलन सुदूर गुजरात में विद्रोह को कुचलने के लिए उन्होंने एक त्वरित हमला करने वाली ऊंटों की फौज बना दी, जो सीकरी से अहमदाबाद सिर्फ 11 दिनों में पहुंच गई, जिसमें उन दिनों 2 महीने लगा करते थे। फौज के इतना जल्दी वहां पहुंचने का नतीजा ये हुआ कि अकबर के 3,000 सैनिकों ने 15,000 सैनिकों वाली फौज को हरा दिया।
King built this gate known as is called Bulan Darwaza.
1601 में गुजरात में अपनी फतह के शान में अकबर ने बुलंद दरवाजा बनवाया। इसे वैभव का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। बुलंद दरवाजा 40 मीटर ऊंचा, 35 मीटर चौड़ा, लाल बलुआ पत्थरों से बने इस दरवाजे को काले और सफेद संगमरमर से सजाया गया है। इस विशाल दरवाजे पर बेहद सुंदर तरीके से तराशे गए 2 अभिलेख हैं। पहले में अकबर की उपलब्धियों और विजय अभियानों का बखान है, जिसकी उम्मीद की जा सकती थी, लेकिन दूसरा अभिलेख हैरान करने वाला है। इस पर फारसी में लिखे शब्द हैं।
मरियम के पुत्र यीशु कहते हैं, ये दुनिया एक सेतु है, इससे गुजर जाओ लेकिन इस पर कोई आशियाना मत बनाओ।
इसी तरह इस पूरे शहर में जहां तहां बिखरे ऐसे अवशेष अकस्मात मिल जाते हैं जिनमें अकबर की अद्भुत उदारता की झलक मिलती है। अकबर के शासनकाल का वक्त वो था जब भारत का इतिहास एक बहुत उदार दौर से गुजर रहा था, जब देश भर में आस्थाओं और विश्वास का एक दूसरे से मिलन हो रहा था। ऐसा लगता है कि अकबर ने बहुत पहले ही ये समझ लिया था कि उनके साम्राज्य में कितनी विविध तरह की आस्थाएं हैं। जब वो किशोर थे तो उन्होंने अपने दरबार में महान हिंदू गायक तानसेन को शामिल किया, ब्राह्मण सलाहकार नियुक्त किए जिसमें मशहूर बीरबल भी शामिल थे, जिनके बादशाह के साथ विनोदपूर्ण वाद विवाद अब उन किस्से कहानियों का हिस्सा हैं जिनसे भारत का हर स्कूली छात्र परिचित है। अकबर बीरबल की कहानियां। अन्य आस्थाओं और संस्कृतियों के लिए अकबर के मन में जो उत्सुकता थी वो इस्लामिक शासकों के इतिहास में बिल्कुल अलग और विलक्षण है। इस पर यह जानकर और भी हैरानी होती है कि अकबर अनपढ़ थे। कुछ का मानना है कि वो डिसलेक्सिया के शिकार थे, यानी उनमें पढ़ने लिखने से संबंधी एक विकार था, लेकिन वाद विवाद के प्रति अपने उत्साह से वो इसकी भरपाई कर लेते थे।
While he was at Fatehpur Sikri, Akbar began to probe religion and theology.
जब अकबर फतेहपुर सीकरी में थे तो उन्होंने अपना धर्म और आध्यात्म का अध्ययन करना शुरू किया और अपने संदेहों का निवारण भी। आज जिसे हम तुलनात्मक अध्ययन कहते हैं उसी को धर्म पर लागू करके उन्होंने ये प्रक्रिया शुरू की। इबादत खाना, इस सभागार में अकबर धर्म और आध्यात्म के विद्वानों को इकट्ठा करते थे ताकि वो अपनी आस्थाओं और दर्शन की व्याख्या कर सके। शुरुआत में सिर्फ इस्लामी विद्वानों तक ही ये सीमित था, लेकिन लगता है कि अकबर जल्द ही उनके तर्कों और रटे रटाए जवाबों से ऊब गए थे। तो विमर्श को जीवंत बनाने के लिए अकबर ने जैन, हिंदू और ईसाई चिंतकों को आमंत्रित किया, लेकिन ऐसा करके मुस्लिम धार्मिक नेताओं से उनका और अधिक मोह भंग होता गया। कुछ लोगों का मानना है कि अकबर की ये आध्यात्मिक तलाश अवसाद के कारण पैदा हुए निजी संकट का नतीजा थी, और ये कि अकबर जिस भाव समाधि की अवस्था को महसूस करते थे वो दरअसल मिर्गी का हल्का असर था। जो भी हो, अकबर ने आगे चलकर समन्वय पर आधारित धार्मिक आस्था की रचना की, जिसे हम दीन इलाही या दैवीय आस्था के नाम से जानते हैं। अकबर के सलाहकार अबुल फजल ने दीन इलाही का वर्णन एक ऐसे मजहब के रूप में किया है जिसमें दूसरे धर्मों की बेहतर चीजों को अपना लिया गया है। ये कमोवेश हिंदू, ईसाई, इस्लाम, जैन और जरथुस्त्र धर्म के कुछ तत्वों का कल्पनाशील मिश्रण था। इसमें सूर्य व अग्नि की पूजा भी शामिल थी, और ऐसा लगता है कि इससे अकबर को रहस्यवाद के प्रति अपने आकर्षण का जवाब भी मिल गया।
Now we're going to take you to show the hall of private audience.
धर्म को लेकर अकबर के रवैये ने उन्हें आधुनिक धर्मनिरपेक्ष और उदारवादी चिंतकों का चहेता बना दिया है। शाही ताकत की कमान संभालने वाला उनका पसंदीदा शासक, एक बहुसंस्कृतवादी विद्वान, लेकिन बहुलतावाद के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के सीधे फायदे थे। इससे न सिर्फ उन्हें अपने साम्राज्य को बढ़ाने में मदद मिली, बल्कि इसके जरिए वो अपनी इतनी विशाल और विविध प्रजा पर भी आसानी से प्रभुत्व कायम रख सके। अकबर के शासन करने का तरीका भी व्यावहारिक था। उनके विशाल साम्राज्य में ज्यादातर जनता गैर मुस्लिम थी, इसलिए बड़ी तादाद में लोगों का धर्म परिवर्तन जैसी सख्त नीतियां व्यावहारिक नहीं थीं। अकबर ने हिंदुओं और गैर मुसलमानों के लिए अलग अलग कानूनों को खत्म कर दिया। उदाहरण के तौर पर संपत्ति कर, प्रतीकात्मक तौर पर ही सही, लेकिन इससे मुसलमानों और गैर मुसलमानों के बीच बराबरी की भावना को बढ़ावा मिला। ये एक महत्वपूर्ण फैसला था, लेकिन हमेशा जारी नहीं रह सका। बादशाह औरंगजेब ने इस फैसले को पलट दिया।
अकबर chose the site of Fatehpur Sikri with a fine strategic mind.
फतेहपुर सीकरी, उनके निर्भीक कल्पना का शहर भी ज्यादा समय तक जीवंत नहीं रह सका। स्थापना के 20 साल से भी कम समय में और देहावसान से 20 साल पहले अकबर की संप्रभुता भी इसमें कुछ नहीं कर पाई। अकबर ने फतेहपुर सीकरी को एक कुशल रणनीतिक नजरिए से चुना था, क्योंकि ये एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित था। लेकिन एक बात जिसका वो ख्याल नहीं रख पाए, वो था पानी। और आखिरकार पानी की वजह से ही उन्हें इस शहर को छोड़ना पड़ा। वो चले गए, दूसरी राजधानी बना ली और उनकी सल्तनत वैसे ही फलती फूलती रही। और इससे उनकी सल्तनत की अथाह संपत्ति का एहसास होता है कि उन्होंने इतने भव्य शहर का निर्माण करवाया और फिर बिना किसी आर्थिक नुकसान के यहां से चले गए। अब हमारे जाने का वक्त हो चला है। सभी मुगल बादशाहों में ये अकबर ही हैं जिन्हें महान कहना उनकी काबिलियत के अनुरूप है। एक ऐसे समय में जब यूरोप और एशिया के ज्यादातर शासक अपनी ही धार्मिक आस्थाओं से चिपके बैठे थे, अकबर ने उन चीजों पर सवाल उठाए, समायोजन और बदलाव के जरिए एक ऐसी रणनीति को गढ़ा जो व्यावहारिक तौर पर बहुत फायदेमंद रही। जो विशाल खजाना उन्होंने संचित किया, उससे उनके वंशज, खासतौर पर जहांगीर और शाहजहां, भारत के समृद्धतम राजा बन सके, कलाओं और वास्तुशिल्प के उत्कृष्ट संरक्षक। लेकिन ये सुसंस्कृत भव्यता जिसके लिए मुगलिया सल्तनत को जाना जाता है, उसकी नींव आंशिक तौर पर एक निर्दयी परिकल्पना पर आधारित थी। एक साम्राज्य को खड़ा करने की प्रक्रिया में थोड़े बहुत हाथ खून से रंगते जरूर हैं। एक बहुसंस्कृतिवादी और सहनशील छवि के बावजूद अकबर इस नियम के अपवाद नहीं है।
फैला उजाला का यह अंक आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। और अब जल्दी से सुन लेते हैं कि इस वक्त मैच की ताजा स्थिति क्या है। आदर्श कुमार जी,
जी निखिल, इस समय अगर भारत की हालत की बात की जाए तो वो काफ़ी पतली नज़र आ रही है, क्योंकि थोड़ी देर पहले जब तक अजिंक्य रहाणे मैदान में थे तो वो काफ़ी तेज़ बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन वो 87 रन बनाकर पहले लौट गए हैं। इससे पहले शिखर धवन जब तक विकेट पर थे तब तक रनों की रफ्तार ठीक थी, उन्होंने 60 रन बनाया, वो भी पवेलियन लौट चुके हैं। रोहित शर्मा आज कुछ खास नहीं कर सके, उन्होंने केवल 16 रन बनाए। सुरेश रैना ने 12 रन बनाए और फिलहाल कप्तान धोनी,
स्कोर कितना है अभी
अगर स्कोर की बात की जाए तो 5 विकेट खोकर 185 रन, जबकि भारत को जीत के लिए 439 रन बनाने आज।
बहुत शुक्रिया आदेश कुमार गुप्त खेल समाचारों के लिए। और अब सुनते हैं प्रमुख समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम में 1 जनवरी 2016 से ग्रुप बी, सी और डी के नॉन गेजेटेड पदों के लिए इंटरव्यू खत्म करने की घोषणा को जनता दल यूनाइटेड और कांग्रेस ने चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन बताया है। सीरिया में पश्चिमी देशों के समर्थन वाले फ्री सीरियन आर्मी गुट ने रूस के सैनिक समर्थन को ठुकरा दिया है। प्रवक्ता ने कहा कि रूस पर भरोसा नहीं कर सकते। मध्य पूर्व एशिया में खराब मौसम की वजह से मिस्र में कई लोगों की मौत हो गई है और इसराइल में भी एक व्यक्ति के घायल होने की खबर है। प्रवासी संकट पर चर्चा के लिए यूरोपियन यूनियन के 10 सदस्य देशों और अल्बेनिया, सीरिया और मैसिडोनिया के बीच आज ब्रसेल्स में बैठक होने वाली है। बीबीसी समाचार।
प्रमुख समाचार सुना रही थी हरता कांडपाल। दिन भर में आज इतना ही, आपसे अगली मुलाकात होगी ठीक 1.5 घंटे बाद घटनाचक्र में। तब तक खबरें देखनी है तो आइए bbchindi.com पर। आज स्टूडियो संभाला शाकिर आलम ने, सभी साथियों संग निखिल रंजन को दीजिए अनुमति। नमस्कार।